नमस्कार भारत, 13 जून दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान वायु, सुरक्षित जगह पर भेजे गए 3 लाख से ज्यादा लोग, सेना सतर्क।
केंद्र सरकार चिंता कर रही है, एयरफोर्स, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड ये सब भी तैयार है।
भारत के लिए क्यों खास है शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन।
भारत के प्रधानमंत्री रूस की और चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, कोशिश ये भी होगी संगठन के सभी नेताओं का समर्थन, कड़ा रुख जो है आतंकवाद को लेकर उसको मिले।
और दुनिया जहान में बात होगी अफ्रीकी देश सूडान के संकट की।
अभी परिवर्तन का समय आ गया है क्योंकि पूरी जनता वहां अगेंस्ट हो गई है, चेंज तो होगा ही।
खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। चक्रवाती तूफान वायु आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने इस मद्देनजर चेतावनी और रेड अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान से होने वाले नुकसान की आशंका से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला महामारी के कांगो से होकर युगांडा तक फैलने की खबर के बाद आपातकालीन बैठक का ऐलान किया है। ये बैठक शुक्रवार को जिनेवा में होगी, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि इबोला का इस तरह फैलना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है या नहीं, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता किए जाने की ज़रूरत है या नहीं। युगांडा में इबोला से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है और 7 अन्य मामलों की पहचान भी की गई है। वहीं युगांडा की स्वास्थ्य मंत्री जेन रूथ ने बीबीसी से कहा कि युगांडा इबोला से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार है।
I am worried because having Ebola in the country is not something that you take lightly. Ebola means death.
मैं चिंतित हूँ क्योंकि देश में इबोला के फैलने को आप हल्के में नहीं ले सकते। इबोला का मतलब मौत है। ऐसी मौतें जिनमें इंसान शामिल हों बहुत ही चिंताजनक होती हैं। हालांकि युगांडा इस स्थिति के लिए पिछले 10 महीने से खुद को तैयार कर रहा था। हमारी टीमें काफ़ी अच्छी तरह तैयार हैं। आपने देखा होगा कि हमने कितनी तेज़ी से इबोला के मामलों की पहचान की है और मरीजों को अलग करके उनका इलाज शुरू किया है। ये थी युगांडा की स्वास्थ्य मंत्री जेन रूथ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की राजधानी मॉस्को में पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नवालिनी भी शामिल हैं। ये सभी लोग रूस के खोजी पत्रकार इवान गोलुनोव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इवान को ड्रग्स सौदे के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लोगों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें मंगलवार को रिहा कर दिया गया। इवान पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है। इवान के समर्थकों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार करवाया। प्रदर्शनकारी बुधवार को भी पुलिस की चेतावनी के बावजूद मार्च करते रहे। एक ऐसा मौका भी आया जब महिलाओं का एक समूह पुलिस अधिकारियों के सामने आकर उन्हें चुनौती देने लगा। आज आपकी माँ आपको टीवी पर देखेंगी, वो देखेंगी कि उनका बेटा औरतों, लड़कियों और बच्चों को गिरफ्तार कर रहा है। वो उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो उसके ही भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे हैं। क्या आपकी माँ ये सब देखकर खुश होंगी? क्या उन्हें आपके लिए खुशी होगी? ये थी रूस की एक प्रदर्शनकारी महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ ने हांगकांग से अपील की है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। हांगकांग में प्रत्यर्पण कानून के संशोधन के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक संघर्ष भी हुआ है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपराध करके हांगकांग भाग जाता है तो उसे जाँच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन जाना पड़ेगा। ब्रिटेन ने भी हांगकांग के नेतृत्व से उसकी जनता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की चिंताओं को सुनने का आग्रह किया है। वहीं हांगकांग की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर प्रायोजित ढंग से दंगे फैलाने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। गुजरात के पोरबंदर में समंदर की लहरों की आवाज, और यह आवाज लगातार तेज हो रही है। वजह है चक्रवाती तूफान वायु जो तेजी से गुजरात के तटीय इलाके की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान आज तट से टकराएगा। तूफान आने के पहले ही तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी हैं और कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने इसे सीवियर यानी जोरदार तूफान की श्रेणी में रखा है। माना जा रहा है कि 1998 के बाद से गुजरात के तट से टकराने वाला ये सबसे खतरनाक तूफान होगा। तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तैयारियों को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए।
केंद्र सरकार चिंता कर रही है, एयरफोर्स, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड ये सब भी तैयार है। लोकल हमारे पुलिस, एसआरपी, एसडीआरएम, हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो सब भी काम में लगी हुई है।
ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तूफान का जनजीवन पर असर दिखने लगा है। गुजरात के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ट्रेनें और हवाई सेवाएं भी रद्द की गई हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मछुआरों को निर्देश दिया गया है कि वो समंदर में न जाएं। तूफान वायु के असर को सीमित करने के लिए और क्या किया जा रहा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी सिंधु वासनी। जी सिंधु।
जी वात्सल्य, चूंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है, ऐसे में स्वाभाविक है कि दोनों ही इस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो साइक्लोन वायु से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस बारे में सरकारी और स्थानीय एजेंसियां रियल टाइम जानकारी दे रही हैं। मैं तूफान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वो इन जानकारियों पर करीब से नजर रखें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि तूफान के मद्देनजर गुजरात से 3 लाख और दीव से 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय तटरक्षक दल के सदस्य, सेना और वायुसेना की इकाइयों को भी तैयार रखा गया है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये चक्रवाती तूफान अरब सागर से उठकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि तट पर टकराते समय हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
जी, फिलहाल इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है तट पर बढ़ने की।
जी वात्सल्य, और अगर बात एहतियात की करें तो वायु को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि एनडीआरएफ की टीमें संभावित नुकसान को रोकने की तैयारी में जुटी हैं। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है, कुछ को पहुंचाया भी गया है। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं और राज्य के 5 हवाई अड्डों पर 24 घंटे तक विमान सेवा बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गुजरात के 10 जिलों में आज और कल स्कूल भी बंद रहेंगे।
बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी इस अपडेट के लिए। इस बीच दीव से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीबीसी गुजराती के सहयोगी भार्गव पारिक। भार्गव, आप वहीं मौजूद हैं जहां लैंडफॉल की संभावना है, क्या स्थिति है वहां और क्या जानकारी है ताजा आपके पास?
जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो दरियाई माहौल है वहाँ पे उफान अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हल्की 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 बारिश हो रही है और टूरिस्ट को यहाँ से निकाला गया है। कुल गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर 2 लाख जितने लोगों को एडुकेट किया गया है सलामत स्थलों पे, और कोस्ट गार्ड और नेवी अभी दरियाई गश्त लगा रही है। बाय एयर 20 हेलीकॉप्टर को तैनात रखा गया है जामनगर और उसके आसपास से, वहां से फूड पैकेट भी भेजे जा रहे हैं। ट्रेन रद्द कर दी गई है और जितने भी टूरिस्ट पोस्ट है वो टूरिस्ट पोस्ट के ऊपर से लोगों को एडुकेट करके अपने सुरक्षित स्थलों पे भेजे जा रहे हैं।
जी भार्गव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लैंडफॉल का क्या वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि पहले बात थी कि सुबह तक लैंडफॉल होगा, तूफान तट से टकराएगा सुबह के वक्त। अभी फिलहाल आपके पास ताजा जानकारी क्या है?
जी, हमारी जो मैट डिपार्टमेंट से बात हुई है तो मैट डिपार्टमेंट के मुताबिक वो सुबह लैंडफॉल होने वाला था, लेकिन अब दोपहर तक ये लैंडफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है और पोरबंदर और वेरावल के आसपास का इलाके के अंदर ऊपर उसके सीधी असर देखी जा सकती है।
जी ये भी बताइए कि सारा अमला तैयारी में जुटा है, जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिन्हें हटाया जा रहा है या जो तट के किनारे हैं उनका किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं वहाँ?
जी हमारी उनसे कई लोगों से बात हुई तो जो झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से हटाया गया है। उनको सिर्फ पहने हुए कपड़े और कुछ सामान के साथ वहां से हटाया गया है, तो उनमें काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि अगर उनका ये चक्रवात आ रहा है तो उसके बाद उनकी क्या हालत होगी, उनके सामान के कोई जिम्मेदारी का क्या
मतलब वो अपने सामान को लेकर चिंतित हैं। कल आपने अमरेली के डीएम से बात की थी, हमने बात जो सुनवाई थी सुबह, उन्होंने कहा था जबरन इवैक्यूएशन की भी तैयारी की गई है, मतलब लोग जो नहीं निकल रहे हैं उनको जबरन हटाने की भी बात कर रहे थे वो, क्या ऐसी भी कोई स्थिति आपने देखी?
जी बिल्कुल, दीव जो इलाका है वहाँ पे जबरन वहाँ से लोगों को एडिक्वेट किया जा रहा था और लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही थी एडिक्वेट होने के कारण, और वो अपने सामान से लेके कई चीजों पे चिंतित थे। कई कई लोगों को ये था कि एक ही जगह के अंदर जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उनको रखा गया है तो वहाँ पे एक ही जगह पे उनको आपूर्ति सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसकी भी उनको
उसकी उनको शिकायत थी। शुक्रिया भार्गव पारिक इस अपडेट के लिए, शाम को फिर हम आपके पास आएंगे। और अब बात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की। ये सम्मेलन आज से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो रहा है, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। ये संगठन क्यों अहम है और भारत शिखर सम्मेलन से क्या हासिल कर सकता है? बीबीसी संवाददाता सिंधु वासनी ने ये सवाल किया दिल्ली के जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से।
शंघाई सहयोग संगठन आज पूरे विश्व का एक बहुत ही प्रभावी, शक्तिशाली और कुशल क्षेत्रीय संगठन बनकर उभर रहा है। इसमें करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 3 बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शिखर वार्ता में शामिल होते हैं। तो आज न केवल ये प्रभावी और कुशल क्षेत्रीय संगठन है बल्कि बहुत ज्यादा सदस्यों वाला ये संगठन है, और उसके अलावा विश्व की कई उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें चीन और भारत भी शामिल हैं वो इसके सदस्य हैं।
इस बार हो रहे शंघाई सहयोग संगठन में कौन से मुद्दे हावी रहने की संभावना है?
शिखर वार्ता में ये तय किया गया था कि एक 3 साल का एक्शन प्लान आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया जाए, और उसके साथ साथ ये आज मुद्दा जो है वो ऊर्जा का शायद उभर कर ज्यादा सामने आएगा इस शिखर सम्मेलन में, क्योंकि अमेरिका के जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान और वेनेजुएला के ऊपर, जो कि 3रे और 4थे सबसे बड़े सप्लायर हैं ऑयल के विश्व में, उनकी जो सप्लाई है ऑयल की वो भारत और चीन को बहुत जरूरी चाहिए होती है, पर ये अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से वो उनका आयात चीन और भारत का बंद हो रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शंघाई सहयोग संगठन के इस शिखर वार्ता में एक तो ये अमेरिका के प्रतिबंधों को किस तरह से सुलझा जाए उनसे, और किस तरह से कोशिश की जाए कि ये जो तेल की सप्लाई है ईरान से और वेनेजुएला से वो फिर से शुरू की जाए, और उसके साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा तो बना ही हुआ है।
और इस मंच पर भारत क्या मुद्दे उठा सकता है?
शिखर वार्ता में कई द्विपक्षीय भी बातें होती हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री इसमें रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, पर उससे भी बड़ी खबर यह है कि शायद भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लगातार कोशिशों के बावजूद अब जब पहली बार आमने सामने आएंगे तब भी कोई औपचारिक रूप से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो जो कड़ा रुख आतंकवाद को लेकर भारत का है वो उसमें मुझे लगता है कि लगातार बना रहेगा। कोशिश ये भी होगी भारत के प्रधानमंत्री की किस तरह से ये पूरे शंघाई सहयोग संगठन के सभी नेताओं का समर्थन भारत की ये जो बदलती नीति है, कड़ा रुख जो है आतंकवाद को लेकर, उसको मिले। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कई मुद्दे हैं जो इस शिखर वार्ता को भारत के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण बना देते हैं।
ये थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। उधर कल नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद शाहिद।
17 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में तीन अहम निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि तीन तलाक यानी तलाक बिदत को आपराधिक बनाए जाने का कानून इस सत्र में लाया जाएगा। पिछली लोकसभा में भी इस कानून को लाया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका था और 16वीं लोकसभा भंग होने के बाद ये समाप्त हो गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,
ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए ट्रिपल तलाक बंदी का यानी तलाक बिदत को पाबंदी लगाने का इस बार बिल लाया जाएगा, जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान लिया।
मोदी सरकार का दूसरा फैसला है कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब तक नियंत्रण रेखा के करीब रहने वाले लोगों को 3% आरक्षण दिया जाता था।
435 गांवों में जो सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं और 3.5 लाख से अधिक लोग, इनको इसका फायदा मिलेगा और यह आरक्षण उनको भी लागू होगा।
तीसरा फैसला लिया गया है कि विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा, जिसमें शिक्षकों की विश्वविद्यालय के आधार पर आरक्षण की सीटें तय होंगी।
कोर्ट ने जो निर्णय किया था कि डिपार्टमेंट वाइज आरक्षण होगा, हमने कोर्ट को और सभी को बताया, कैबिनेट को भी आज बताया गया कि उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्गों का बहुत नुकसान होगा। और इसलिए जैसे पहले होता था कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट एक यूनिट समझकर उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 जुलाई को राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 3 जुलाई से ये अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल हुए एक चरमपंथी हमले में CRPF के 5 जवानों की मौत हो गई। हमले में 3 जवान घायल भी हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
बीती बुधवार को दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के KP रोड पर चरमपंथियों ने CRPF और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम पर करीब शाम 5 बजे हमला किया, जिस हमले में CRPF के 5 जवान मारे गए हैं, जबकि एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 CRPF के जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान एक चरमपंथी को मारने का दावा किया है। पुलिस ने अपने एक बयान में बताया है कि चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच आमने सामने गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि घटना स्थल से जो मवाद बरामद हुआ है, उससे इस बात का पता चलता है कि मारा गया चरमपंथी विदेशी था। इस हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एक स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नामी चरमपंथी संगठन ने ली है। इसी साल फरवरी में चरमपंथियों ने पुलवामा में CRPF की एक कानवाई पर हमला किया था, जिस हमले में 40 जवान मारे गए थे। इस साल अभी तक मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों को मारा है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब आज के अखबारों की बात सिंधु वासनी के साथ। जी सिंधु, क्या खबरें हैं अखबारों में?
जी वात्सल्य, जैसे कि हम अभी रिपोर्ट सुन रहे थे माजिद की, तो CRPF जवानों के शहीद होने की खबरें लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही हैं।
जी, उनकी मौत हुई 5 जवानों की।
जी, और अगर मैं जनसत्ता देखूं तो इसके पहले पन्ने पर खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को कई नसीहतें दीं, जैसे कि वो टाइम पर ऑफिस पहुँचें और घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम से बचें। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ वक्त निकाल कर अधिकारियों से मिलें और मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी लें, पार्टी सांसदों से और जनता से भी मिलते रहें। तो ये PM मोदी की
2014 में भी हमने देखा था, जब सरकार गठन हुआ था,
ऐसी ही नसीहतें
देती, निर्देश नसीहतें सामने आई थी।
जी वात्सल्य, और
अमल कितना होगा, असल नजर इस पर रखनी होगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगी। अखबार लिखता है कि सोशल मीडिया पर केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 119 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं, और जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उनमें एक बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की भी है। तो उत्तर प्रदेश में ही ऐसा नहीं हो रहा है, केरल में भी हो रहा है।
पश्चिम बंगाल से एक सिलसिला शुरू हुआ है जो उत्तर प्रदेश होते
सोशल मीडिया पर
अब केरल पहुंच गया है।
जी वात्सल्य, केरल से एक और महत्वपूर्ण खबर है वात्सल्य, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक केरल ललित कला अकादमी से सम्मानित एक कार्टून राज्य में सियासी विवाद की वजह बन गया है। अखबार लिखता है कि केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इस कार्टून के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल लिया है कि कार्टून ईसाइयों के धार्मिक चिन्हों का अपमान करता है। और ये कार्टून दरअसल बलात्कार के आरोपी बिशन फ्रैंको मुलक्कल का एक कैरिकेचर है। उन पर एक नन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पद से भी हटा लिया गया। और जो कार्टूनिस्ट है उनका कहना है कि एक राजनीतिक व्यंग था और उनका मकसद किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था,
यानी उन्होंने अपनी सफाई दी
जी। और अकादमी इस फैसले की समीक्षा भी करेगी। अब इसके अलावा कई अखबारों जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर दिल्ली NCR की तस्वीरें भी हैं, जहां कल शाम आंधी और हल्की बूंदाबांदी से तापमान तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण भी बढ़ गया
जी। हवा जो है उसकी शुद्धता में और गिरावट आ गई है। बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहान। बीते रविवार से सूडान के कामगार हड़ताल पर हैं। वो राजधानी खार्तूम की सड़कों पर जमे हुए हैं और नागरिक सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। विरोध को रोकने के लिए सेना की कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हुई है। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर सूडान में ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? मोहम्मद शाहिद ने की है इसकी पड़ताल।
दुनिया जहां। अरबी भाषा में सूडान का मतलब काले लोगों का देश होता है। 1 जनवरी 1956 को आजाद होने के बाद अधिकतर समय सैन्य शासन और गृह युद्ध से जूझता रहा उत्तर पूर्व अफ्रीका का देश सूडान आज लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। सूडान में 2011 में विभाजन हुआ और दक्षिणी सूडान नामक एक नया देश बनकर सामने आया, लेकिन ये विभाजन की लकीर 19वीं सदी से कई दशक पहले ही खींच चुकी थी। सूडान के उत्तरी हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य का शासन रहा। 18वीं सदी में पूरे सूडान पर मिस्र ने शासन किया। इस वजह से सूडान के उत्तरी हिस्से में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हो गई और इन्हें आधे अरब कहा जाता है, जबकि दक्षिणी हिस्से में बाद में ईसाइयों की बहुसंख्यक आबादी हो गई। सूडान और दक्षिणी सूडान में भारत के राजदूत रहे दीपक वोहरा कहते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने अपने लोगों को कहा कि वो मिस्र के दक्षिण की ओर यानी सूडान जाएं और वहां से सोना, हाथी दांत और गुलाम लेकर आएं।
To the south of Egypt, which means to the northern part of Sudan. और वहां से उन्होंने इनको बोलते थे अब्द। अब्द इज सिंगुलर, अबीद इज प्लूरल, इसका मतलब होता है स्लेव। इनको कहते चलो हमारे साथ, अब तुम स्लेव्स बन गए।
20वीं सदी में ब्रिटेन ने मिस्र के साथ मिलकर सूडान पर राज किया और यही वो दौर था जब उत्तर और दक्षिण सूडान के बीच विरोध और हिंसा की खाई चौड़ी होती चली गई। 1969 में पहले सैन्य तख्तापलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1985 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1986 में सादिक अल महदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1989 में ब्रिगेडियर ओमर हसन अल बशीर ने उनका तख्तापलट कर दिया और वो लगातार 30 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1972 में राष्ट्रपति मोहम्मद निमेरी ने आदिस अबाबा शांति समझौता किया, लेकिन इसी बीच सूडान में तेल की खोज हो गई, जिसके कारण इस समझौते को तोड़ दिया गया। इस तेल का बड़ा हिस्सा दक्षिणी सूडान में था, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्र इसको अपना हिस्सा बताते थे। 2005 में एक बार फिर शांति समझौता हुआ और 2011 में इसके तहत जनमत संग्रह किया गया, जिसमें दक्षिणी सूडान के 99% लोगों ने अपने लिए एक नए देश को चुना। अल बशीर उत्तर और दक्षिण को एक साथ रखने के नारे के साथ सत्ता में आए थे। उन पर दक्षिण सूडान और पश्चिमी सूडान के दारफूर में नरसंहार कराने के आरोप लगे। दारफूर में तकरीबन 3 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है। इतने विवादों के बाद भी अल बशीर ने बड़ी आसानी से दक्षिण सूडान को आजाद क्यों कर दिया? इस सवाल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे कहते हैं,
वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा कि यहाँ पे साउथ सूडान में 70% एनर्जी रिसोर्सेज हैं और वो सब चाइनीज, इंडियन, मलेशियन को ही सिर्फ मिलेंगे। सूडान अल बशीर का पॉलिसी था, तो उन्होंने उस गृह युद्ध को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और डायरेक्ट थ्रेट दिया अल बशीर को कि अगर आप नहीं रेफरेंडम को एक्सेप्ट करते हो तो फिर ये माना जाएगा कि आप इस एग्रीमेंट को वायलेट करते हो और फिर हम आपसे सीधे लड़ाई करेंगे।
तो 2011 में दक्षिण सूडान के बंटवारे के 8 साल बाद आखिरकार अल बशीर को उनकी ही सेना ने पद से हटा दिया।
एक तो दबाव ये था कि वो पूरे इस रीजन में पहले अलकायदा का सेंटर था, दूसरा वो उनका एकदम पॉलिसी था कि हमें उधर झुकना नहीं है, तीसरा उनके इंडिपेंडेंस देने के बाद भी वो उसको ओपन अप नहीं कर रहे थे, और जो अपोजिशन के नेता हैं वो उसको पश्चिमी देशों से पूरे मिले हुए थे कि यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक चेंज होना चाहिए, लेकिन जो उनको हटाया भी गया है उसमें ये स्थिति क्लियर नहीं है कि मिलिट्री ने उनको उनसे मिल के हटाया या उनको अपोज करके हटाया।
सूडान में अधिकतर समय सैन्य शासन रहा और इसका मुख्य कारण वहाँ कई तरह के जनजातीय समूहों का होना भी है। इस कारण यहाँ कई राजनीतिक पार्टियां बनी, लेकिन नागरिक शासन क्यों नहीं परवान चढ़ पाया, इस पर दीपक वोहरा कहते हैं,
वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बन गई, एक इस ग्रुप की पार्टी बन गई, उधर की बन गई, उधर की बन गई, आपस में लड़ते थे और लोग तंग आ गए। तो उन्होंने कहा कि आर्मी वही चीज है जो डेवलपमेंट हमें दे सकती है, और कई इयर्स मिलिट्री रूल में डेवलपमेंट बहुत हुआ, देयर इज नो बेसिक।
अल बशीर के खिलाफ सूडान प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के बैनर तले जनता ने प्रदर्शन किए थे। लोकतंत्र के समर्थन में हुए इन प्रदर्शनों के बाद अप्रैल 2019 में अल बशीर को उनके पद से हटा दिया गया और ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल की सरकार बनी, जिसके तहत रक्षा मंत्री औद अहमद इब्न औफ ने सत्ता संभाली। अल बशीर के करीब होने के कारण इब्न औफ को कुछ ही दिनों में पद से हटना पड़ा और तब से लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान सत्ता संभाले हुए हैं। अल बुरहान ने वादा किया है कि वो 2 साल में चुनाव कराएंगे, लेकिन लोग इस पर भी राजी नहीं हैं। तो सेना कब सत्ता छोड़ सकती है, इस पर दीपक वोहरा कहते हैं,
सूडान के इतिहास में ये 2-3 बार हुआ है जब मिलिट्री रूल से तंग आते ये लोग कहते हैं सौरा, सौरा का मतलब रेवोल्यूशन, और इस बार जो उनके स्लोगन लग रहे थे वो यही था, तुम्हें क्या चाहिए सौरा, तुम्हें कहाँ से मिलेगा सौरा, सबको चाहिए सौरा, बढ़ता जा रहा था। हम देख रहे जहां पर एक इंस्टीट्यूशन आर्मी की तरह या एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत साल हुकूमत करती है वो आसानी से पावर नहीं छोड़ती।
2011 में अरब स्प्रिंग्स के दौरान ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र ने करवट ली और अब दुनिया की नजर सूडान पर है। क्या सूडान में जल्द परिवर्तन संभव है?
अभी परिवर्तन का समय आ गया है क्योंकि पूरी जनता वहाँ पे इसके अगेंस्ट हो गई है, जिस वजह से आए थे कि हम साउथ सूडान को इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे वो भी हो गया, मिलिट्री ने भी इनको डाल दिया। अब ये हालत ये है कि ये रिजीम जो है सो कंजर्वेटिव इस्लामिक रिजीम है और इसको सऊदी अरेबिया और बहुत सारे कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है मिलिट्री को। अब ये सपोर्ट कितना सस्टेनेबल होगा इस पे देखना है, चेंज तो होगा ही।
सूडान में सादिक अल महदी के अलावा कोई ऐसा बड़ा विपक्षी नेता नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। सादिक की आयु 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो इस वक्त सारा दारोमदार युवा नेताओं पर ही टिका है। सूडान की सेना अपनी सत्ता कितने दिनों तक बचाकर रख पाएगी और इसके लिए कितना आम लोगों का खून बहेगा, ये अब देखना होगा।
दुनिया जहान पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार, और आपको बता दें कि कल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। भारत ने लगातार 2 मैच जीते हैं, लेकिन अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड की टीम भारत को झटका दे चुकी है, तो भारत को सतर्क रहना होगा। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। चक्रवाती तूफान वायु आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। तूफान से होने वाले नुकसान की आशंका से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला महामारी के कांगो से होकर युगांडा तक फैलने की खबर के बाद आपातकालीन बैठक का ऐलान किया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कम से कम 1,000 अमरीकी सैनिकों को पोलैंड भेजने पर विचार कर रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस पोलैंड पर लगातार सैन्य दबाव बना रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग रूस के खोजी पत्रकार इवान गोलुनोव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।